జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారి, గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధరి, గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధరి, యశోదానందన వ్రజ జన రంజన, యశోదానందన వ్రజ జన రంజన, యమునా తీర వనచారీ, యమునా తీర వనచారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారి, గోపీ జన పల్లభ గిరివర ధరి, గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధరి, యశోదానందన వ్రజ జన రంజన, యశోదానందన వ్రజ జన రంజన, యమునా తీర వనచారీ, యమునా తీర వనచారీ, యమునా తీర, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారి, కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే హరే రామ 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 హరే హరే, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama, Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare. Ram Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Jnanati Virandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Taptakantan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Manchakalpakarubhasya Kripasindhubhaya Vachapaddanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratmise Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Radha Govinda Dev Ki Jai Hari 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 Namaskar Hari Bo Hari ना वॉल्यूम बढ़ा था कि इसमें बोल सकते हरे कृष्ण अध्याय संख्या हाँ हरे 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 श्री कृष्ण हरे हरे हरि बोल हरे ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധർ ശ്രീവാസുദി ഗൗർഭക്തവൃന്ദ ഗ്രന്ഥാ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീ ജയ്. പഞ്ചം സ്കന്ദ് കാ യേ നയാ അധ്യായ 20 സംഖ്യ ഹൈ. ബ്രഹ്മാണ്ഡ രചന കാ വിശ്ലേഷണ. തുടക്കം കാം തോ കരി ദേ ഹരി വോ ഹരി 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 വോ. ഹരി ഹരി വോ ഹരി 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 ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഹരി ഹരി വോ. ഇസ് അധ്യായ മേ ലക്ഷദ്വീപ് സെ പ്രാരംഭ കർക്കെ വിഭിന്ന ദ്വീപോ തഥാ ഉൻകോ ഘേർനേ വാലെ ഹരി വോ. സുയി സുയി നഹീ ചാഹിയേ. ഹരി 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 വാലെ സമുദ്രം കാ വർണ്ണൻ ഹൈ. ഇസ്കെ അന്തർഗത ലോകാലോക് നാമക് പർവത് കി സ്ഥിതി ഔർ ഉസ്കെ ആകാർ പ്രകാര കാ ഭീ വർണ്ണൻ ഹൈ. ലക്ഷദ്വീപ് വിസ്താര മേ ജംബുദ്വീപ് സെ ദുഗുണാ ഹൈ ഔർ ലവൺ സാഗർ സെ ഘിരാ ഹൈ. ഇസ് ദ്വീപ് കാ സ്വാമി ഇദ്മജിവ്വ ഹൈ ജോ മഹാരാജ പ്രിയവ്രത കെ പുത്രോ മേ സെ ഹൈ. यह द्वीप 7 विभागों में बटा है और प्रत्येक में एक पर्वत का पर्वत तथा एक बड़ी नदी है. दूसरा द्वीप शालमली द्वीप है. ये सुरा के समुद्र से घिरा है और 32 लाख मील विस्तृत अर्थात ലക്ഷദ്വീപ് സെ ദുഗുണ ഹൈ. ഇസ്കോ ഖഗോൽ കഹത ഹൈ. യേ ജോ യഹ വർണ്ണൻ ഹോ രഹാ ഹൈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ രചന കാ വിശ്ലേഷണ. ഇസ്കെ അന്തർഗത യേ ഖഗോൽ അസ്ട്രോണോമി. फिर एस्ट्रोनॉमर्स भी होते हैं. हरी हरी. एक तो भूगोल होता है. भूगोल भू पृथ्वी गोल है तो उस संबंध में ज्ञान जियोग्राफी. और ये खगोल है. ഖ മതലബ് ആകാശ. ഗോൾ ആകാശ കി സീമ നഹീ ഐസാ തോ ഹം ലോഗ് കഹതേ രഹതേ ഹൈ. സ്കൈ ഈസ് എ ലിമിറ്റ്. മീൻസ് ദേർ ഈസ് നോ ലിമിറ്റ്. തോ ഭീ ഐസേ ഇത്ന വിസ്തൃത ഹൈ കി वो अमर्याद है अनलिमिटेड है कहो तो भी ठीक ही है लेकिन तो भी सीमा तो है. ब्रह्मांड भी जो अंडे के आकार का है अंडे के आकार का ब्रह्मांड तो ये सारा ख खम में आकाश में ही सब सारे मंडल ग्रह नक्षत्र 14 भुवन त्रिभुवन स्थित है. तो इस खगोल का ज्ञान जिसके ज्ञाता है सुखदेव गोस्वामी, जिसके ज्ञाता तो श्रील व्यासदेव सप्ताविश अवतार है, तो सृष्टि करता तो जानते ही है, गॉड इज अ क्रिएटर, गॉड इज अ जनरेटर, जी इज अ जनरेटर, वी ओ इज ऑपरेटर, डी इज अ डिस्ट्रॉयर, ऐसा भी कहते हैं जी ओ डी, ये तीन अलग अलग विभाग, तीन गुण अवतार संभालते हैं। तो उसमें से ब्रह्मा को क्रेडिट वैसे सृष्टिकर्ता के रूप में मिलता है, लेकिन उनको भी पहले ज्ञान तो विष्णु देते हैं, ही इज एम्पावर्ड, तो फिर उनको पता भी चलता है उनका क्या कर्तव्य है सृष्टि का, कैसे निर्माण करना है। ओम, फिर आगे के मंत्र भी ब्रह्मा वैसे कहते रहते हैं। इस मंत्रों के उच्चारण के साथ, इन शब्दों के साथ वैसे सृष्टि का निर्माण भी होता है। हम जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, वैसे ब्रह्मा हथौड़ी लिया, मंत्र उच्चारण के साथ, शब्द से रूप, शब्द से बनते हैं रूप। हरी हरी, तो ये सृष्टि आकार लेने लगती है वैसे मंत्रोच्चारण के साथ। मंत्रोच्चारण फिर इच्छा है, विचार है ब्रह्मा का, उसी के साथ सृष्टि का निर्माण है। और ये मंत्र शाश्वत है, वैसे ये मंत्र शाश्वत है, वेद उक्त वेदों में कहे हुए मंत्र, ये भी शाश्वत है, वेद वाणी शाश्वत है, वेद अपौरुषेय है, मतलब किसी पुरुष ने नहीं बनाया, या आदि पुरुष ने ही बनाया ये वेद की वाणी, लेकिन उन्होंने जब भी बनाए भगवान ने इस वाणी को, वही वाणी वेद वाणी शाश्वत है। यानी कि जब 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 सृष्टि होती है तब तब कुछ अलग अलग वाणी, अलग अलग शास्त्र या मंत्र या नहीं, वेद शाश्वत है, वेद पुराण उपनिषद ये शाश्वत है, इटर्नल। तो ब्रह्मा को विधि पूर्वक भगवान विष्णु शिष्य बनाते हैं, वे पुत्र भी है भगवान के पहले पुत्र, और इस ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति फिर अमीबा नहीं है, ब्रह्मा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा। और बगल वाले ब्रह्मांड में पंचमुखी ब्रह्मा, उसके बगल वाले ब्रह्मांड में षडमुखी ब्रह्मा, सप्तमुखी, दसमुखी, शतमुखी, सहस्रमुखी ब्रह्मा। तो ब्रह्मांडों के जैसे आकार बढ़ते जाते हैं, उसी के साथ वहां की व्यवस्था भी बढ़ती जाती है, उसके लिए अलग अधिक दिमाग भी लड़ाना पड़ता है, एक दिमाग से काम नहीं बनता तो अधिक अधिक दिमाग अधिक अधिक सिरों की आवश्यकता होती है। तो वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक तो श्री कृष्ण है, तो वह उन्हीं से इस सृष्टि भी उन्हीं का एक विस्तार है, भगवान का विस्तार है। शंकरशन उसके विस्तार है, चतुर्व्यूह कहते हैं उनके विस्तार है, उसमें से जो शंकरशन है सेकंड शंकरशन से फिर महाविष्णु बनते हैं, और महाविष्णु से फिर ये सारे ब्रह्मांड जो पुरुष अवतार कहलाते हैं। महाविष्णु भगवान के अवतारी है श्री कृष्ण, और ये पुरुष अवतार तीन पुरुष अवतार है, महाविष्णु गर्भदक्ष विष्णु क्षीरोदक्ष विष्णु, ये तीन पुरुष अवतार है जिनका संबंध इस सृष्टि के साथ। तो वह तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अभी हर या तो सारे ब्रह्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मिलके भी एक खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी, फिर हर इंडिविजुअल हर एक एक ब्रह्मांड का भी खगोल शास्त्र, खगोल तो गोल समझ रहे हैं, गोल गोल क्यों कहा जा रहा है, तो अंडे के आकार के हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं टरबूजा जैसा था, टरबूजा या फुटबॉल, ब्रह्मांड फुटबॉल जैसा है और हम फुटबॉल के अंदर है, और फिर जैसे तृतीय स्कंद में वर्णन पहले हो चुका है कैसे ब्रह्मांड आधा भर जाता है जल से, गर्भोदक्ष विष्णु के महाविष्णु के शरीर से कारणार्णव जल, कारणोदक्षई विष्णु महाविष्णु उनके शरीर से जल, तो एक सागर, उस सागर में ये सारे ब्रह्मांड तैरते हैं। कॉजुअल ओशन, कॉजुअल ओशन कॉज कॉज जो है महाविष्णु जो इस उन्हीं के शरीर से निकलने वाला उत्पन्न निश्चित जल से बन गया सागर, उसमें लेट जाते हैं महाविष्णु, तो उनके शरीर से ब्रह्मांड का उत्पादन, और फिर ये ब्रह्मांड उसी जल में तैरते रहते हैं, महाविष्णु के शरीर से उत्पन्न जल उस सागर में तैरते रहते हैं। तो टरबूजे ही टरबूजे, वैसे एक समय जब ऐसा वर्णन आता है कि एक समय धर्मश ग्लानिर भवति भारत, तब भगवान के अवतार का समय हो चुका है तो सारे देवता निवेदन करने जाते हैं। एक समय तो वो अधिकतर जाते हैं इसी ब्रह्मांड में जो क्षीरोदक्ष विष्णु है, क्षीर सागर में, है ना भाई, कई बातें तो हम कह ही रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग सेड हियर, कोई फोकस तो नहीं है लेकिन ऐसे ही इंफॉर्मेशन पैसिंग ऑन की जानकारी आपके जानकारी के लिए, या बैठे बैठे सारे ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड, और ये सारी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की मिलके एक पाद विभूति का, एक पाद भगवान का एक प्रकार का साम्राज्य हुआ, प्राकृतिक साम्राज्य ये संसार, प्राकृतिक संसार, और त्रिपाद तीन पाद विभूति तो अलौकिक या अप्राकृत जगत है, वैकुंठ, साकेत, गोलोक इत्यादि, ये दो प्रकार के भगवान के किंगडम्स है। किंगडम मटेरियल किंगडम एंड स्पिरिचुअल किंगडम। दस मटेरियल किंगडम में कई सारे ब्रह्मांड और तो हर ब्रह्मांड में जब या पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होती है तो देवता जाते हैं भगवान को आवाहन निवेदन करने हेतु, पधारिए प्रभु। तो एक बार तो वे जाते, अधिकतर क्षीरसागर जाते हैं, क्षीरसागर के तट पर ही जाते हैं, वहीं से फिर वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। प्रभुपाद लिखे वायरलेस, बिना तार, कोई तार का उपयोग नहीं है, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो कुछ नया तो नहीं है, ये तो चल रहा है, जब से सृष्टि है तब से वायरलेस कम्युनिकेशन चल रहा है। नथिंग इज न्यू, हम थोड़ा थोड़ा भी डिस्कवर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भगवान थोड़ा लीक आउट कर देते हैं, लीकिंग, और उसको चोरी करते हैं हम लोग। और हृदय आई डिस्कवर्ड, आई इन्वेंटेड, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन के क्रेडिट मिलते हैं किसी किसी शास्त्रज्ञों को, लेकिन ये कुछ जानकारी नई तो नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो विद्वान है, विद्वान या जो ज्ञानवान है वे जानते हैं। वैसे ऑटोमेटिक नाम की चीज भी कोई नई नहीं है, ऑटोमेटिक कृष्ण को वसुदेव जब ले जा रहे थे कंस के कारागार से गोकुल, तो रास्ते में कारागार के जो द्वार थे खुल रहे थे, कैसे, ऑटोमेटिकली खुल रहे थे। बस उनको कृष्ण को लेके वहां पहुंचना था उस द्वार के पास, तो उसी के साथ आगे बढ़ गए और एक द्वार आ गया, सब खुल रहे द्वार। तो कुछ चाबी मास्टर की वगैरह नहीं थी वसुदेव के पास, मास्टर की नाम की, चोरों के पास मास्टर कीज होती है, मतलब उनके पास हर ताला खोलने की चाबी होती है, तो मास्टर की कहते हैं। कई कीज नहीं लेके जाते, ऐसे कुछ की होती है उनके पास, लेकिन वसुदेव के पास तो कैसी मास्टर या सर्वेंट की कोई भी की नहीं थी, अभी ऑटोमेटिकली खुल रहा था। न तो विमान नए हैं, विमान भी कब से है इस संसार में, जब से सृष्टि है तब से विमान भी है। ओके, तो एक बार देवता सीधे गोलोक में जाके ही भगवान से इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर आगमन का प्राकट्य का निवेदन करने वाले थे। तब क्या किया उन्होंने, हु वॉज लीडिंग, आई थिंक ब्रह्मा लीड कर रहे थे, कि ये गर्ग संहिता में भी वर्णन आता है, ब्रह्मा ही लीड कर रहे थे। तो उनको गोलोक जाना है, तो फिर जो तरबूजा या फुटबॉल है, ये ब्रह्मांड है, उसे बाहर तो निकलना होगा। तो निकले तो कैसे निकलेंगे, तो वे एक होल, एक छिद्र बना हुआ है, जब त्रिविक्रम वामन भगवान के त्रिविक्रम हो गए, तो त्रिविक्रम भगवान ने जब अपना दूसरा कदम उठाया, इतना लंबा और बड़ा मजबूत था वो कदम, भारी था, उसने स्पर्श किया ब्रह्मांड के इनसाइड कवर को, पैर से धक्का लगा तो उसी के साथ ब्रह्मांड में क्रैकिंग हुआ, ब्रह्मांड में छेद हुआ, सुरंग बन गया, टनल जैसा। और फिर ये जो तैरता है ये ब्रह्मांड वो कारनार नव जल में बाहर सागर में, तो सागर का पानी फिर अंदर लीक होके अंदर आ गया। और यही है गंगा मैया की, ये गंगा मैया का प्राकट्य है। तो एक समय स्वर्ग गंगा भी नहीं थी और भगीरथ ने पृथ्वी पर लाया वो भी नहीं थी गंगा, और पाताल में भी नहीं थी, ब्रह्मांड में ही नहीं थी, तो भगवान त्रिविक्रम लाए उस गंगा को। तो ये सारे देवता उस टनल में से जा रहे थे। टनल तो ब्रह्मांड का जो आवरण है वेरी वेरी थिक, उसमें सारे पृथ्वी का आवरण, फिर जल का, फिर अग्नि का, फिर हवा का, फिर आकाश का, और एक आवरण दूसरे आवरण से 10 गुना अधिक बड़ा या चौड़ा होते जाता रहता है। इस प्रकार ये ब्रह्मांड एक किला भी है, फोर्ट है, इसलिए इसको दुर्ग कहा है। दुर्ग मतलब जाने के लिए कठिन, इस ब्रह्मांड को पार करना कठिन है, दुर्ग दुर्गम पथ। तो जो कारागार भी होते हैं तो कारागार के बाहर, कारागार की दीवार ही कैसी होती है, बड़ी चौड़ी होती है, ऊंची भी होती है, और वहां से निकल आए तो फिर आगे क्या होता है, वहां खाई होती है, जल होता है उसमें, और क्या क्या क्रोकोडाइल्स वगैरह, और क्या होता है, और फेंसिंग होता है, और क्या होता है, और सो लाइक दैट। ये जो ब्रह्मांड है कई सारे आवरण है, तो लेकिन ये देवता उस जो सुरंग है, द टनल है, उसमें से जा रहे थे। तो वर्णन आता है कि वो गंगा के किनारे से जा रहे थे, गंगा अंदर बहती हुई आ रही थी और सारे देवता उनका लक्ष्य बाहर, ब्रह्मांड के बाहर निकलना था। तो चलते हुए आप तो सो रहे, इतने में एक दो दो चार व्यक्ति सो रहे आराम से। तो हुआ, ये कोई अद्भुत बात नहीं है, सच अमेजिंग। भगवान का सृष्टि भी ऐसी अद्भुत है, और ये खगोल का ज्ञान है। खगोल शास्त्रज्ञ बनना चाहते हो तो सुनो भागवत, सुखदेव गोस्वामी से समझो ये एस्ट्रोनॉमी, ये खगोल। तो चलते हुए 33 करोड़ देवता जा रहे थे इस सुरंग में से, टनल में से बाहर निकले। तो फाइनली क्या हुआ, सब बाहर जब आए तो क्या दिखाई देगा होगा, क्या देखा होगा उन्होंने, जल्दी कहो, शीर्षागर बाहर, बहुत सारे ब्रह्मांड देखे उन्होंने पहली बार। उन्होंने सुना होगा पहले, वैसे ब्रह्मा ने एक समय सुना भी नहीं था, उनको पता नहीं था कि और भी कोई ब्रह्मांड और ब्रह्मा भी होते हैं। उन्होंने सोचा आई एम द ओनली वन, चतुर्मुखी, मैं अकेला ही, तुम और कौन है, कौन से ब्रह्मा आए हैं, भगवान ने पूछा था। तो ये कैसा प्रश्न है, कौन से ब्रह्मा, मतलब और भी है क्या कोई, मेरे अलावा और भी कोई ब्रह्मा है, ऐसा ब्रह्मा हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा सोच रहे थे। तो भगवान ने सारे ब्रह्माओं को आमंत्रित किया था द्वारिका, और फिर हमारे ब्रह्मा समझ गए, यस यस मैं अकेला नहीं हूं, और भी ये सप्तमुखी दसमुखी शतमुखी सहस्रमुखी सारे ब्रह्मा हैं, अलग अलग ब्रह्मांड से। तो ये सारे देवता जब बाहर निकले तो उन्होंने असंख्य ब्रह्मांड देखे। तो उन ब्रह्मांडों के बीच में से वे आगे बढ़ रहे थे, और जब ब्रह्मांड सब पार किए बाहर बाहर से, अंदर नहीं, अंदर प्रवेश नहीं किया, तो फिर नदी आई, उस नदी का नाम है विरजा, विरजा रिवर, और ये भगवान की इस मटेरियल किंगडम की सीमा है। तो उसको पार करो तो फिर भगवान का अलौकिक जग प्रारंभ होता है। तो देवता पार किए, तो पहले तो उनको ब्रह्म ज्योति फेस करनी पड़ी, ब्रह्म ज्योति को फेस कर, ब्रह्म ज्योति कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ज्योति ज्योति इतनी ज्योति इतना प्रकाश, वैसे प्रकाश प्रकाश नहीं होने पर भी नहीं दिखाई देता, और प्रकाश ज्यादा होने पर भी नहीं दिखाई देता। टॉर्च अगर आपके आंखों में ऐसा किया तो फिर आप कुछ नहीं देख पा रहे, हटा हटा कुछ देख नहीं पा रहा, न तो टॉर्च को देखते हो न तो टॉर्च पकड़ने वाला व्यक्ति को आप देख सकते हो। ऐसा प्रकाश है ब्रह्म ज्योति का, तो मायावादी उसी ज्योति को ही देखते हैं, इसीलिए उनको ये ज्योति जिनसे निकलती है उनको वो देख नहीं पाते, और वो समझ बैठते हो ये प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश है, सब प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही है, बस ज्योति है, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज दिस, गॉड इज दैट, जो कहते रहते हैं, गॉड इज लाइट, गॉड भगवान प्रकाश। लेकिन टॉर्च है, टॉर्च पकड़ने वाला व्यक्ति भी है, उसी प्रकार ये ज्योति ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा अहम भगवान का, इस ब्रह्म ज्योति की प्रतिष्ठा आधार श्रोत मैं हूं भगवान ने कहा। तो वे आगे बढ़े उस ज्योति में से, तो फिर उनको अलग अलग वही रुक जाते और ये निष्कर्ष तक पहुंचते कि ये लाइट ही सब कुछ है, तो फिर मायावादी बन जाते, ब्रह्मवादी बन जाते। लेकिन ये भक्त थे, भगवान की खोज में थे, भगवान का जो लोक है गोलोक उसकी खोज में थे। तो केवल भगवान के किंगडम में नहीं जाना है, वहां लैंडिंग भी करना है। तो प्रभुपाद कहते किसी राजा के राज्य में तो प्रवेश किया, लेकिन फिर अंततो गत्वा हम राजा से मिलना भी चाहेंगे। तो उन्होंने कई सारे ये वैकुंठ जगत वैकुंठ लोक देखे, वैकुंठ लोक, हर अवतार का एक 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 लोक है, वही से तो अवतरती मतलब उतरती उतरते हैं नीचे, इस संसार में आते हैं भगवान। तो वे आगे जाते रहे, तो फिर राम का लोक आ गया साकेत, अयोध्या धाम वहां से भी आगे बढ़े तो आ गया गोलोक। गोलोक में उन्होंने प्रवेश किया। वहां भी कुछ गेटकीपर वगैरह थे, वे रोक लेते हैं, लेकिन अनुमति मिलती है प्रवेश की। फिर पहुंच जाते हैं एक कमल, एक विशेष कमल, और भी दल है इसके, लेकिन फिर अष्ट कमल उसमें विराजमान राधा और गोविंद को देखे। हरी बहु गोलोक में। और फिर उन्हें अपना सारा निवेदन कह के सुनाया। धर्म की ग्लानी कैसी हुई है और हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारे बस का रोग नहीं रहा, इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। ब्रह्मा चाय नहीं पीते अंग्रेजी में कहते, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो फिर भगवान आया से मैं आऊंगा, आप आगे बढ़ो, आप भी जन्म लो, मैं भी आता हूं। तो इस प्रकार एक समय देवता उन्हें ऐसा प्रवास किया अपने लोग से ब्रह्मांड के बाहर आए और कई सारे ब्रह्मांड देखे, विरजा रिवर इसी को ऐसे ब्रह्मा कहे, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु। तो सबसे ऊंचा है गोलोक नाम का, कृष्ण का निज धाम। गोलोक नामनी मतलब नाम के, गोलोक नामनी निज धामनी, नामनी धामनी नाम का धाम। कैसे नाम का? गोलोक नामनी निज धामनी, गोलोक नाम के अपने निज धाम के नीचे क्या क्या है? देवी धाम, ये ब्रह्मांड जहां हम है देवी धाम। फिर महेश धाम, वैसे महेश धाम या काश क्या सदाशिव, एक शिव सदाशिव। सदाशिव का लोक तो विरजा नदी के पार परे है, पार्ट ऑफ वैकुंठ लोकस। तो ये सदाशिव वैसे महाविष्णु के विस्तार माने जाते हैं। और यही महाविष्णु के विस्तार सदाशिव अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हुए। अद्वैत आचार्य तो हुआ, तो देवी धाम, फिर महेश धाम, शिव जी का महेश धाम, उनसे भी ऊपर है हरि धाम मतलब वैकुंठ धाम, राम का साकेत अयोध्या धाम, उससे ऊपर है गोलोक नाम निज धाम। तो ये दिस इज ओवरऑल पिक्चर भगवान के साम्राज्य का या सृष्टि का, इसके दो विभाजन है। अलौकिक और लौकिक। 하나님의 싸움을 तीसरा द्वीप ग्रीस से घिरा है और सात विभागों में विभाजित है. यह कुशद्वीप कहलाता है. इसका स्वामी महाराज प्रियव्रत का अन्य पुत्र हिरण्यरेता है. इसके वासी अग्नि रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं. इस द्वीप का विस्तार 64 लाख मील अर्थात शालमली द्वीप का दुगुना है. एक द्वीप दूसरे से दुगुना चल रहे हैं. चौथा द्वीप एक एक द्वीप क्रौंच द्वीप है जो दुग्ध सागर से घिरा है. सात सात द्वीप है इस ब्रह्मांड में और ये सात अलग अलग प्रकार के सागर है. दूध का भी सागर है तो घी का भी सागर है और लवण नमकीन जल का सागर है और भी आगे. इसका विस्तार ये क्रौंच द्वीप है जो दूध सागर से घिरा है. इसका विस्तार है 128 देख रहे ना पहले 32 था 32 लाख फिर 64 लाख फिर 128 लाख एक से दूसरा दुगुना है. और यह भी अन्यों की तरह सात भागों में विभाजित है. इसके प्रत्येक भाग में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है. इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रत का ही एक पुत्र घृतपृष्ठ है. इस द्वीप के स्वामी जल के रूप में भगवान की पूजा करते हैं. पांचवा द्वीप शाक द्वीप है जो 256 लाख मील विस्तृत और मट्ठे के समुद्र से घिरा है. ये आपको छाछ मिलेगा. समुद्र कैसा है? छाछ छाछ से बना है. इसका स्वामी मेधातिथि नामक महाराज प्रियव्रत का पुत्र है. यह द्वीप भी सात भागों में विभाजित है जिसके प्रत्येक भाग में एक पर्वत और एक बड़ी नदी है. हर पर्वत हर द्वीप पर विशेष नदी विशेष पर्वत. इसके वासी वायु रूप में भगवान की पूजा करते हैं. जैसे संसार में भी कुछ लोग अलग अलग तत्वों की पूजा करते हैं. कोई अग्नि के पूजक होते हैं अज्ञारी कहते अज्ञारी कौन थे फारसी अग्नि की पूजा करते हैं. तो कोई पत्थर की पूजा करते थे जंगल की पूजा करते किसकी अफ्रीकन जंगलों में हर व्यक्ति कुछ तो पूजते ही रहता है अलग अलग तत्वों की आराधना. छठा द्वीप पुष्कर द्वीप है जो पिछले द्वीप से दुगुना विस्तृत है और निर्मल जल के समुद्र से घिरा हुआ है. निर्मल मतलब सादा स्वीट वाटर. एक लवण जल भी है नमकीन जल वाला भी समुद्र है. इसका स्वामी विधिहोत्र है जो महाराज प्रियव्रत का ही पुत्र है. यह द्वीप मानसोत्तर पर्वत द्वारा दो भागों में विभाजित है. इसके वासी श्री भगवान के ही अन्य रूप स्वयंभू की पूजा करते हैं. इस द्वीप से भी आगे दो और द्वीप है जिनमें से एक सदैव सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता है और दूसरा सदैव अंधकार से पूर्ण रहता है। इन दोनों द्वीपों के मध्य लोकालोक नामक पर्वत है, जो ब्रह्मांड के सिरे से 1,000,000 मील दूर है। इस पर्वत पर भगवान नारायण अपने ऐश्वर्य का विस्तार करते हुए निवास करते हैं। लोकालोक पर्वत से आगे का भाग आलोक वर्ष कहलाता है, और इसके भी आगे मुक्ति के इच्छुक पुरुषों का निवास स्थान है। सूर्य ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य कहाँ है? ब्रह्मांड के मध्य में और फिर हर ब्रह्मांड में एक सूर्य होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इस ब्रह्मांड के सूर्य का प्रकाश दूसरे ब्रह्मांड नहीं पहुंचेगा। जैसे हर घर में दिए जलते हैं, एक घर का दिया दूसरे घर तक प्रकाश नहीं पहुंचा था, उसका मन अनुभव है। भूर्लोक भूवलोक के बीचों बीच अंतरिक्ष में स्थित है। तो लोग अलग अलग लोक है, भूर भुव स्व भूलोक, हम लोग भूलोक में है, इसके ऊपर है भूव भूव और इसके ऊपर है स्व स्वर्ग और उसके ऊपर है और भी चार लोक ऊपर है। क्या नाम उनके? जनलोक, तपलोक, महरलोक और सत्यलोक, ऐसे चार लोक। तो विचार भूर भूव स्व स्वर्ग, फिर जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्य सत्यलोक में ब्रह्मा का निवास। तो तपस्वी इत्यादि मुमुक्षु मुक्ति के एक सद्य मुक्ति और एक क्रम मुक्ति बताई सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के बिल्कुल प्रारंभ में, द्वितीय स्कंध के प्रारंभ में ये कहे। तो कुछ लोग इंस्टेंट मुक्ति ऑन द स्पॉट चाहते हो, फिर वो मुक्त होके भगवत धाम लौटते हैं। सद्य सद्य मतलब अद्य सद्य आज अभी, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। तो वे इस जन्म के अंत में भी मुक्त नहीं होना चाहते। अभी अभी नाउ इज अ गुड टाइम, अद्यैव टुडे नाउ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी अच्छा समय है, ब्रह्म जिज्ञास बनो। और तो अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा, अभी अभी भविष्य का क्या भरोसा? Who has seen the future? Do not trust the future, कहते। इसलिए कुलशेखर, राजा कुलशेखर की यह प्रार्थना है। तो कहते अभी अच्छा है, अभी अभी अच्छा है, अभी अभी मेरे मन को मुक्त करो भगवान, और आपके चरण कमलों में स्थित करो। सरकार तो कहती कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है, बूढ़ा हो जाऊंगा कि नहीं इसका भी भरोसा नहीं है। बूढ़े होके लोग नहीं मर रहे आजकल, इसको नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ, बहुत बढ़िया। कैसा मरा व्यक्ति? नेचुरल डेथ, बहुत अच्छा सम्माना जा रहा, नेचुरल डेथ। डेथ तो डेथ डेथ है, नेचुरल डेथ या फिर और प्रकार से। तो कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, जब कंठ अवरोधन होगा, कंठे घुर घुर आयते, घुर घुर जब आवाज निकलने लगेगा वृद्धावस्था में, कफ की मात्रा बढ़ जाती है, कफ अपित्त वायु में से कफ थोड़ा डोमिनेट करता है, तो फिर सांस में अवरोध उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में कहा आपका नाम भी नहीं निकलेगा, कंठावरोधन विधो स्मरणम, फिर स्मरण कहा कैसे होगा, इसलिए अध्ययों में विशुद्ध मानस। तो ये एक प्रकार की मुक्ति की अभिलाषा, भक्त बन के मुक्ति की अभिलाषा। तो दूसरे तो इसको सद्य मुक्ति कहते हैं, सद्य, और दूसरे क्रम मुक्ति, मतलब मुक्त होना, लेकिन कोई जल्दी नहीं है क्या, व्हाट इज द हरी, क्या जल्दी तो नहीं है, जाना तो है भगवान के धाम, लेकिन कुछ इस संसार के भोग भोगते 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 फिर वो लोग स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से ऊपर जाते हैं, महालोक तपलोक जनलोक। और जब ऐसा भी वर्णन आता है, जब ब्रह्मांड के आंशिक प्रलय का समय आता है, जब ब्रह्मा के दिन का संध्या काल आ जाता है और फिर रात्रि आ जाती है, तो रात्रि के समय ब्रह्मांड का जो नीचे के भाग या लोक है उसमें प्रलय होता है। तो प्रलय के अंतर्गत, प्रलय की जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत फायर, ब्रह्मांड को आग लगाई जाती है। एक सूर्य तपाता है, इतना तपाता है सूर्य अपनी तीव्र प्रखर, तो सारे जल के सागर या तालाब या नदी सब सूख जाते हैं। और फिर अनंत इस ब्रह्मांड के एट द बॉटम, इस अनंत शेष, उनके मुख से ज्वाला निकलने लगती है। अनंत शेष, और वे ज्वाला सारे जो तलातल पाताल सुतल वितल महातल, ये नीचे सात जो लोक है वे जलने लगते हैं। और फिर पृथ्वी, फिर स्वर स्वर्ग, तो फिर ये जो ऊपर वाले लोक में रहने वाले लोग, ये क्रम मुक्ति के लिए, क्रम मुक्ति के लिए जो वहां पहुंचे हैं। तो ऐसा वर्णन में से सुखदेव गोस्वामी सुनाए, महा ये प्रलय आंशिक प्रलय का वर्णन सुनाए सुखदेव गोस्वामी को। ये सुखदेव गोस्वामी का अंतिम प्रवचन है, ये अंतिम काइंड ऑफ टॉपिक समझाए हैं द्वादश स्कंद में, बारहवें स्कंद में, क्योंकि अभी सुखदेव गोस्वामी, राजा परीक्षित राजा परीक्षित को सुनाए शुभदेव गोस्वामी। तो राजा परीक्षित के शरीर का भी अभियंत देहांत होने वाला है। देहांत के समय भी क्या होता है, अंगता बढ़ता है और शरीर का प्रलय ही होता है। शरीर का क्या होता है, डेवेस्टेशन, टोटल डेवेस्टेशन, प्रलय होता है। फिर उसको अंतिम संस्कार करा के भी जलाते तो जरूर है। तो हुआ तो वहां समझाया है कि राजा परीक्षित को टू प्रिपेयर हिम मेंटली, तुम्हारे शरीर का अंत देहांत होने वाला है, उसके पहले तुम सुनो ब्रह्मांड का जब अंत होता है, हंसिकांत सही, तो उस वो प्रलय का वर्णन सुनाए। इस प्रलय के, ब्रह्मांड का जो प्रलय होता है, ब्रह्मांड में जो प्रलय होता है, उसके समक्ष तो तुम्हारे शरीर का प्रलय तो सुनाते हैं, कुछ भी नहीं। तो पहले सुन तो लो ब्रह्मांड का प्रलय। तो सुखदेव गोस्वामी सुनाए, तो उस वक्त सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब ब्रह्मांड का प्रलय और अग्नि ज्वाला वो ब्रह्मांड में ऊपर के लोकों तक पहुंच जाती है, तो ऊपर के लोकों में जो क्रम मुक्ति के लिए पहुंचे हुए महात्मा, सिद्ध पुरुष, तपस्वी तपलोक में, वे और ऊंचे लोक में, और ऊंचे लोक में जाते वहां भी अग्नि आ जाए तो और भी ऊपर चढ़ते हैं, वहां अग्नि आ जाए तो और भी ऊपर चढ़ते हैं। तो ये आंशिक प्रलय का समय है, तो इस समय पूरा प्रलय नहीं होता। ऊपर वाले कुछ लोग हैं ब्रह्मा के सत्य लोक में, तो अग्नि या जल या प्रलय पहुंचता ही नहीं, तो उसके नीचे वाले लोगों तक थोड़ा थोड़ा वो दिखाता है अपना रंग, प्रलय दिखाता है। नीचे वाले, बिल्कुल नीचे वाले तो पूरा अनुभव कर ही लेते प्रलय का। तो ब्रह्मा के एक दिन के अंत में ये प्रलय होता है, और फिर ब्रह्मा जब जग जाते हैं तो सृष्टि पुनः पूर्ववत बनाते हैं ब्रह्मा, एंड लाइक दिस रिपीट परफॉर्मेंस रिपीट होता है। तो सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, तो क्रम मुक्ति वाले ऊपर जाते हैं, स्वर्गलोक से ऊपर जाते हैं, और फिर अंततो गत्वा जब ब्रह्मा, उसके पहले भी जा सकते हैं, फिर ब्रह्मा जब ब्रह्मांड का जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय, तो आंशिक प्रलय जब होता है तो ब्रह्मांड जहां भी है वही स्थित रहता है, लेकिन महाप्रलय जब होता है तब फिर महाविष्णु के शरीर में वो ब्रह्मांड का प्रवेश होता है। और इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उनके 84 लाख योनियों में, जो योनियों के जो शरीर है उनका भी तो प्रलय हो ही गया, तो फिर सारे जीव सूक्ष्म शरीर, अपने अपने सूक्ष्म शरीर में स्थित रहते हैं महाविष्णु के शरीर में। तो तब तक वे महाविष्णु के शरीर में रहते हैं जब तक महाविष्णु क्या करते हैं, सांस लेते हैं। महाविष्णु जब तक सांस ले रहे हैं तब तक वे जीव भी और सारे ब्रह्मांड भी, ब्रह्मांड का तो प्रलय हो गया, अपने अपने आकार में रूप में नहीं रह जाते, उनका विलीनीकरण या डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, अलग अलग तत्व हो जाते, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। तो फिर पुनः जब महाविष्णु उत्श्वास श्वासोच्छ्वास श्वास उत्श्वास, तो महाविष्णु जब उत्श्वास लेते हैं तो फिर पुनः ये ब्रह्मांड सृष्टि प्रारंभ हो गई। ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। पुनः जब सांस लेने लगेंगे तो पुनः उन ब्रह्मांडों का महाविष्णु के शरीर में प्रवेश, महाप्रलय। तो महाविष्णु कितनी बार सांस लेते होंगे, ये श्वासोच्छ्वास कितनी बार चलता ही है। महाविष्णु तो शाश्वत है, ऐसा समय नहीं था जब महाविष्णु नहीं थे और ऐसा समय नहीं रहेगा जब महाविष्णु नहीं रहेंगे। तो ये पुनः 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 यही चक्र है, संसार चक्र। तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तो इस चक्र में फंसे रहेंगे। ये चक्र अच्छा है? नॉट वेरी गुड। तो ये ब्रह्मांड कोई पूछ रहे भाई इसे सृष्टि क्यों करते रहते थे, क्यों वाई क्रिएशन की सृष्टि की क्या जरूरत है, क्या जरूरत थी? तो जरूरत हरी 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 इसकी जरूरत है या इसके उद्देश्य है? दो उद्देश्य है इस सृष्टि के, दो उद्देश्य है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहला उद्देश्य है जो बहिर्मुख होते हैं जीव अनादिकाल से, बहिर्मुख होके भोग वांछा करे, भोग की जो वांछा करते हैं इनका भाव ईश्वर भाव, ईश्वरो अहम, अहम बलवान अहम सुखी, जो इसको भगवान आसुरी संपदा वाले लोग है, आसुरी संपदा तो आसुरी संपदा जिनकी है, इनकी संपदा इनकी संपत्ति आसुरी भाव ही, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के भोग के विलास के लिए ये सृष्टि है। हरिभाव विच्युत, विच्युत होते ही नहीं जीव, जीव का पतन होता ही नहीं, जीव भगवान से विमुख होके भोग विलास की वांछा करते ही नहीं तो इस सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं होती। गोलोक के जो नियम है, धर्म के नियम, कृष्ण भावना की विधि विधान है, उसका भी पूरा पालन करते रहते तो क्या जरूरत थी इन ब्रह्मांडों की और इस सृष्टि की? लेकिन कुछ बदमाश जरूर होंगे, निकलेंगे कुछ नागरिक, इसीलिए क्या है वो प्रिजन हाउस है। सभी नागरिक अगर कैसे होते, सज्जन होते, नागरिक को क्या अच्छा नागरिक मतलब क्या क्या कहेंगे, कैसा अच्छा नागरिक मतलब अच्छा नागरिक, आदर्श नागरिक, नागरिक जेंटलमैन, सचमुच जेंटलमैन, केवल टाई पहना हुआ सिर्फ जेंटलमैन, कोट पहन लिया, पहना मैं तो जेंटलमैन। या अभी अभी आई जस्ट यूज द टॉयलेट, उस पर लिखा था जेंटलमैन। आई एम श्योर मैं जेंटलमैन तो हूं शायद, इसीलिए तो मैंने टॉयलेट जेंटलमैन लिखा था, वो यूज की। लेकिन जैसे वो फिर सिक्योरिटी से जाना होता था, हैंड्स अप, सारी जांच पड़ताल होती है, उसका सब टटोल लेते हैं, फ्रॉम नाखून से सीखा तक। उन्हें कहते हैं आई एम अ जेंटलमैन, मेरी स्क्रीनिंग क्यों, आई एम अ जेंटलमैन, आई जस्ट यूज द टॉयलेट, उस पर लिखा है जेंटलमैन। देखो टाई देखो, मेरा कोट देखो, बूट पहना हूं, आई मस्ट बी जेंटलमैन। लेकिन रफियंस, ऐसा भी जमाना आ गया, कोई भी हो सकता है, तथा कथित जेंटलमैन हो सकता है। तो ऐसे जो जो जेंटलमैन नहीं है, अच्छे सच्चे नागरिक नहीं, उनके लिए फिर कारागार, द प्रिजन हाउस। सरकार को कोई शौक नहीं है, सरकार शौकी नहीं है प्रिजन हाउस की सृष्टि और सारा मेंटेनेंस, सारी व्यवस्था, बहुत बड़ा खर्चा है, पानी बहुत बड़ा, उसके बिना भी। लेकिन ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे, होते हैं, जो फिट होते हैं, कारागार के लिए फिट होते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, इसीलिए ये सृष्टि भी है। तो ये एक उद्देश्य हुआ। तो दैवी असुरी संपदा वालों के लिए या रहो या भोग भोगो, भोगो फिर भोगी हो जाओ, रोगी हो जाओ, ये हो जाओ, परेशानी भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है वैसे बद्ध जीवों की मुक्ति के लिए, इस रिफॉर्मेशन सेंटर भी है। कैद खाने का भी कह सकते दो उद्देश्य है, ऐसे जो सरकार के नियमों का उल्लंघन करने वालों को वहां रखो, लेकिन सरकार चाहती तो है कि ये सुधरे, अपना थोड़े नॉर्मल सिटीजन बने। तो कई सारे प्रयास होते सरकार के, सरकार द्वारा उनको पुनः अच्छे सच्चे नागरिक बनाने के कई सारे प्रयास होते हैं। तो इस ब्रह्मांड में भी पुनः भगवत धाम भेजने की व्यवस्था यह होती है, ये भी उद्देश्य है। बात तुमसे नहीं मानते तो लात यह मिलती है, जन्म मृत्यु की लात मिलती है, शायद दूसरे कुछ उससे कुछ सुधरे, कुछ सोचे। कुछ पर्याय भी तो है, कितनी बार हुआ पुनरपि जननम मरणम, सम वे आउट, कुछ मार्ग दूसरा भी तो कुछ होगा। मैं बचना चाहता हूं उससे, बहुत हो गया, टू मच। ऐसा जो सोचने लगते हैं भगवत धाम लौटना चाहते हैं, तो फिर इसीलिए फिर भगवान भी आ जाते हैं प्रिजन हाउस में। मिनिस्टर्स भी जाते हैं, मिनिस्टर आजकल स्वयं कैदी बन के ही जा रहे हैं। एक समय मिनिस्टर जाते थे प्रिजनर्स को सुधारने के लिए, कुछ उपदेश देने के लिए, अच्छे नागरिक बनो, टैक्स पेमेंट करो, ये करो, वो करो। तो भगवान आते, संभवामी युगे युगे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना हेतु भगवान आ जाते हैं। तो उन जीवों जिनका समय आ गया, जो मुक्त होना चाहते हैं, नॉर्मल बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था है संसार में। भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और इस धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा के साथ धर्मो रक्षति रक्षितः, कि धर्म ही रक्षा करता है। धर्म के धर्म मतावलंबी बन सकते हैं, धर्म की धर्म का आश्रय, धर्मम शर सत्यम वध, सत्य बोलना सीखो, सत्य सुनो, सत्य बोलना सीखो और धर्म के अनुसार आचरण करो, ये सब सिखाया समझाया जाता है। तो शास्त्र है, भगवान ने जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण, और फिर शास्त्र को समझाने के लिए फिर गुरुजनों को, आचार्य गणों को भगवान ही भेजते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद ही पाए भक्ति लता भी, ये टीम एफर्ट है गुरु और कृष्ण। तो कृष्ण ही ऐसे जो गंभीर है मुक्त होने भक्त बनने के लिए भी, सीरियस अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, क्षमस्व, क्षमा करो, क्षमा करो, पुनः गलती नहीं करेंगे। तो उनको भगवान गुरुजनों के, संतों भक्तों महात्माओं के संग में ऐसे लोगों को लाया जाएगा। और फिर भगवान जब आते हैं तो उनकी लीला स्थलियां वो स्थान बन जाते हैं, वहीं से जीव जा सकते हैं। रेफ्यूज, धाम को कहा रेफ्यूज, आश्रय लेना, आश्रय स्थलिया है भगवान के, लीला स्थलिया। और फिर मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र भी प्राप्त होता है। फिर कृष्ण प्रसाद भी प्राप्त होता है। और इस प्रकार ये दूसरा कारण, सृष्टि तो बनी गई है, तो इसी सृष्टि का कुछ ऐसा उपयोग करो, सही उपयोग करो, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, बैड बार्गेन, लेकिन मेक द बेस्ट यूज और मुक्त होने के लिए। कांटे से ही क्या करना है, कांटा निकालना है। तो भगवान की सेवा में उपयोग करना है सृष्टि का, संसार का, वही संसार है। तो आत्मेंद्रिय प्रीति के बजाय कृष्णेंद्रिय प्रीति, फिर कॉन्शियसनेस में बदल हुआ, रेवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस, भाव में अंतर आ गया, तो वैल्यूज वगैरह चेंज हो गई, इसको हम मूल्यवान समझते हैं। तो हुआ तो इंद्रिय तृप्ति के बजाय कृष्ण की सेवा में इसका उपयोग, फिर मानस और देह गेह जो किचु मोर अर्पिलो तो पदे नंद किशोर, मेरा मान, मेरा देह, मेरा गेह आपके चरणों में, आपकी सेवा में, मेरी खुद की सेवा के बजाय आपकी सेवा में। तो भुक्ति के स्थान पर भक्ति, पहले करते थे बद्ध बन के भुक्ति, तो भुक्ति छोड़ के फिर भक्ति करें। तो ये दो उद्देश्य, बद्ध जीवों के भोग विलास की भी यहां व्यवस्था, क्योंकि जीव कुछ चाहते हैं ऐसा स्वतंत्र जीवन, लेकिन ये तो वैसे उचित नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है, स्वभाव के विपरीत है, वैसे जीव के स्वभाव के विपरीत, लेकिन लेट हिम ट्राई, डोंट टच इट। छोटा बच्चा आग को हाथ लगाना चाहता है तो बड़े बुजुर्ग डोंट टच, स्पर्श मत करो, लेकिन वो सुनता नहीं, फिर क्या करता है, स्पर्श कर ही देता है, फिर जो फिर शायद सीखता है, नो मोर। तो फिर दूध पीते समय कुछ ओट जल गया तो फिर छाछ भी दिया उसको, तो पुनः जला सकता है क्या, इसकी कहावत है, अलग अलग भाषा में अलग अलग इस पर कहावतें बनी है। वंस बर्न्ड ट्वाइस शाय, ऐसा भी है, वंस बर्न्ड ट्वाइस शाय। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की तो पूरा किया कि नहीं हमने, शायद हो गया, शायद एक हो गया, शायद एक पैराग्राफ रह गया, तो कल पढ़ सकते हैं। ओके, स्टॉप हियर। हाँ, महाप्रलय जब होता है सारे जीव हरि हरि बोल हरि बोल, महाप्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में ब्रह्मांड में